the subject of the day of Christ.
आप सबको शुभ वंदना सुप्रभात और आज हम प्रभु के दिन के बारे में विचार करेंगे.
And I'm sure like yourselves I've been thrilled to sit and start the day with these lovely thoughts of the rapture and being caught away to heaven.
और मैं आशा करता हूं कि इस सुबह हम बैठकर प्रभु जब आएगा हम कैसे उठा लिए जाएंगे इन विचारों से हमारा हृदय भर गया है और हम आनंदित हुए हैं.
एंड दैट इज इंडिस्प्यूटेबली द नेक्स्ट इवेंट दैट दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू सी इन कनेक्शन विद गॉड्स पर्पस.
और निश्चित रूप से इसकी कोई शंका नहीं कि संसार इसी घटना को परमेश्वर के उद्देश्य की पूर्ति के रूप में शीघ्र देखने जा रही है.
Remember we spoke yesterday about dispensations, different ways in which the house is ordered and ruled.
कल हमने देखा कैसे किस प्रकार से विभिन्न समयों में विभिन्न रूप से एक घर नियम के अनुसार चलाया जाता है.
We often say that today God is dealing with us in this dispensation of grace.
आज हम इस प्रकार से कहते हैं कि अब इस करुणा के युग में परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है.
Well, God has always exercised grace, but it is particularly true of this age.
परमेश्वर ने अपनी करुणा को हमेशा दिखाया लेकिन इस युग में विशेष रूप से ये दर्शाया जा रहा है.
This is the age of the gospel of the grace of God.
ये परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार का युग है.
A message which is unique to this age.
और एक संदेश जो इस युग के लिए अति आवश्यक और योग्य है.
Concerning his son, our Lord Jesus Christ.
और वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संबंध.
The means by which God is calling out that people unto himself.
और यही वो माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर लोगों को अपने लिए चुनकर अलग कर रहा है.
The gospel is the power of God unto salvation to everyone that believeth.
और हर एक जो विश्वास करता है इसके लिए सुसमाचार परमेश्वर के सामर्थ है.
And so, when in the knowledge of God, the church is complete.
और जब परमेश्वर के ज्ञान में कलीसिया का काम संपूर्ण हो जाएगा.
When the body has reached full maturity, Ephesians chapter 4.
और इफिसियों की पत्री उसके चौथे अध्याय में जैसा कहा गया है कि जो शरीर है संपूर्ण हो जाएगा.
When that house is complete, Ephesians chapter 2. The house, the building is complete.
और जब परमेश्वर का भवन तैयार हो जाएगा.
Then will come that sequence of events that our brother has so wonderfully described to us this morning.
और ये सारी बातें जब हो जाएंगी हमारे प्रिय भाई ने आज सुबह जिन घटनाओं का वर्णन क्रम में किया है वो सब उसी क्रम में होने वाला है.
Now that is going to be a crisis in many ways.
और एक तरह से कहा जाए तो वो बहुत सारे परेशानियों का आरंभ भी होगा.
God's purpose for the church on earth will have terminated.
और परमेश्वर का इस पृथ्वी पर अपने कलीसिया के संबंध में जो उद्देश्य है वो वहां समाप्त हो जाता है.
And he will be ready to take up his dealings with the nation of Israel again.
उसके बाद फिर वह इसराइल जाति के साथ अपने व्यवहार को अपने काम को शुरू करेगा.
Today Israel has no precedence and no preference in the sight of God.
आज इसराइल के संबंध में हम देखें तो परमेश्वर उनको उनसे अभी कोई उतना वास्ता नहीं रखता ना उनको कोई प्रथम स्थान देता है.
They are still his ancient people.
वो आज भी उसके वो पुराने लोग हैं.
But he has set them to one side.
लेकिन परमेश्वर ने आज उनको अलग हटा के रख दिया है.
There is no special ministry to the Jew today necessary.
आज यहूदी के लिए एक विशेष कोई काम और उनकी सेवकाई नहीं है.
They along with the Gentiles on exactly the same common ground can be saved through faith in our Lord Jesus Christ.
आज यहूदी भी अन्य जातियों के साथ एक ही आधार पे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा उद्धार प्राप्त करके परमेश्वर के संतान बन सकते हैं.
That will change at the rapture.
और जब हम उठा ले जाएंगे तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा.
So now these three programs we spoke about yesterday, the Jew, the Gentile, the Church of God.
अब ये तीन कार्य जो हो रहे हैं क्रम में हमने देखा कि यहूदी है अन्य जाति है और जो कलीसिया है.
When the church is taken home to heaven,
जब कलीसिया स्वर्ग में उठा लिया जाएगा.
There are certain things that will happen with the church in heaven.
ऐसी कुछ बातें हैं जो कलीसिया के संबंध में स्वर्ग में घटने वाली है.
And then there are things are going to happen with Israel upon earth.
और इसके अलावा हम देखेंगे कि पृथ्वी पर इसराइल के साथ भी कुछ होने वाला है.
एंड ऑल्सो गॉड इज गोइंग टू डील विद जेंटाइल नेशंस अपॉन अर्थ.
इतना ही नहीं परमेश्वर अन्य जाति जो देश हैं उनके साथ पृथ्वी पर व्यवहार करने वाला है.
सो व्हाट द स्क्रिप्चर शोज़ अस इज दैट at the moment the rapture takes place,
इसलिए पवित्र शास्त्र में दिखाता है कि जब परमेश्वर के लोग उठा लिए जाएंगे,
two new days begin.
दो नए दिन का आरंभ होता है.
Not days of 24 hours.
24 घंटों की एक दिन है, उसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूं.
They are days of 24 hours in Genesis 1.
उत्पत्ति के पुस्तक उसके पहले अध्याय में 24 घंटों के एक दिन को हम देखते हैं.
The evening and the morning were the first day, the second day, so on.
और हम पढ़ते हैं कि शाम हुई, सुबह हुई, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इस क्रम में हम पढ़ते हैं.
But the word in used for these days in the New Testament scripture is a word that describes a particular period of time.
लेकिन दिन करके जो शब्द नए नियम में उपयोग किया गया है वो एक समय की जो लंबा समय है उसको बताती है.
So that a day, a period of time is going to begin which deals with things that happen in heaven.
ऐसा एक समय काल आने वाला है जहां पर स्वर्ग में घटने वाली बातों को हम देख पाएंगे.
And another day begins at exactly the same time, but it deals with things on earth.
और उसी समय दूसरा एक और दिन की शुरुआत होती है जो पृथ्वी में घटने वाली बातों के साथ व्यवहार करेगी.
A heavenly program and an earthly program.
स्वर्ग में होने वाली कुछ बातें उसी समय पर पृथ्वी पे कुछ बातें हो रही है.
The earthly program, the day that begins, is called in Scripture the day of the Lord.
और पृथ्वी में जो दिन की शुरुआत होगी उसको पवित्र शास्त्र परमेश्वर का दिन, प्रभु का दिन करके कहता है.
And its extent is from the rapture right through until the very end of time.
और उसकी शुरुआत जब प्रभु के लोग उठा लिए जाएंगे तब से होती है और समय की समाप्ति या सब कुछ जब समाप्त होगा तब तक होती है.
The day of the Lord starts with the rapture.
और प्रभु का जो दिन है वो विश्वासियों के उठा लिए जाने से होता है.
And it covers the tribulation period.
और उस समय में महापीड़ा का काल भी होगा.
The second advent of the Lord Jesus when he returns to the earth to reign.
उसके अलावा उसमें प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पर दोबारा आगमन, वो भी घटना घटेगी.
And the millennium.
इसके अलावा हजार वर्ष का जो राज्य है वो भी उस समय में होगा.
All these things are in the day of the Lord.
ये सारी बातें जो प्रभु का दिन कहते हैं उस दिन में घटने वाली है.
And they are things on earth.
और वो पृथ्वी पर घटेगी.
Another day begins at the rapture, and it is the day we're going to be thinking about in this session. It's called the day of Christ.
ठीक वैसे ही जब ये दिन शुरुआत स्वर्ग में एक दिन की शुरुआत होती है जो प्रभु के लोगों के उठा लिए जाने के साथ होता है उसके बारे में हम आज विचार करेंगे.
It is also called the day of Jesus Christ.
उसको यीशु मसीह का दिन कह के भी कहा जाता है.
And it is also called the day of the Lord Jesus.
इतना ही नहीं वो प्रभु यीशु का दिन भी कहा जाता है.
We will look at the scriptures that deal with these.
और जब हम वचन के आधार पर इन बातों को देखेंगे.
They are different names for exactly the same period of time.
एक ही काल के लिए, एक ही समय के लिए दो अलग नाम दिए गए हैं.
The day of Christ.
मसीह का दिन.
The day of Jesus Christ.
प्रभु यीशु का दिन.
The day of the Lord Jesus.
और प्रभु यीशु मसीह का दिन. प्रभु यीशु का दिन.
That day, which begins at the rapture, will cover events in heaven and will terminate when the Lord Jesus returns from heaven to the earth to establish his kingdom.
वो दिन तब से शुरू होता है जब प्रभु के लोग उठा लिए जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर अपने राज्य की स्थापना के लिए आते हैं तब तक.
So while the tribulation period is running its course on earth,
इसलिए जब महापीड़ा काल का दौर इस पृथ्वी पर हो रही है.
And it finishes, the day of tribulation finishes when the Lord returns to the earth.
और ये महापीड़ा काल का दौर तब समाप्त होता है जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर उतर कर आएंगे.
While that is going on earth, the day of Christ is happening in heaven.
जब ये बातें यहां पर हो रही है पृथ्वी पर, मसीह का दिन स्वर्ग में हो रहा है.
Now, great things are going to happen in that period, and it's not just the matter of the judgment seat of Christ and the marriage of the Lamb.
और उस समय स्वर्ग में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, ना केवल न्याय का जो सिंहासन के सामने खड़ा होना है, मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना, और जो कलीसिया मेमने का विवाह, ये दो बातें ही नहीं हो रही।
Those events are going to be dealt with as separate subjects by other brethren.
ये बातें होंगी, लेकिन इसके बारे में अन्य भाई आपको समझाएंगे।
So I'm not going to speak about those this morning.
इसलिए मैं उस विषय पर बात नहीं करूंगा।
But I want to speak about certain the setting of things in heaven during the day of Christ.
लेकिन मैं आपको मसीह के दिन में स्वर्ग में कैसी परिस्थिति है उसके उससे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ।
Now we're going to begin by reading in 1 Corinthians 4.
इसकी आरंभ में मैं पहले कुरिन्थियों चौथे अध्याय से कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा।
We'll read the three separate scriptures in the Corinthian letters and then we'll talk about them.
हम कुरिन्थियों की पत्री में से तीन विभिन्न भागों को देखेंगे और उस पर अधिक विचार करेंगे।
So the first verse I want to read is 1 Corinthians 4 verse 3.
पहली भाग जो हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 4 उसका 3.
But with me, says Paul, it is a very small thing that I should be judged of you or of man's judgment. Yea, I judge not mine own self.
पहला कुरिन्थियों 4 उसका 3, परंतु मेरे लिए यह बहुत छोटी बात है कि तुम या कोई मानवीय न्यायालय मेरा न्याय करे। सच तो यह है कि मैं स्वयं अपना न्याय नहीं करता।
Chapter 5.
आइए पांचवें अध्याय में।
And Paul is speaking to them about the man who is known to be an incestuous man, a sinner, and he's in the midst of the Corinthian assembly.
और यहाँ पर प्रेरित पौलुस पाप या अधर्म में फंसे हुए उस व्यक्ति के बारे में परिचय करवा रहा और बता रहा है जो कुरिन्थ की कलीसिया में पाया गया था।
And the Corinthian believers are priding themselves on their tolerance in allowing this man to be with them.
और हम देखते हैं कि ये जो कुरिन्थ के विश्वासी हैं, बड़ी दीर्घ क्षमा दिखाते हुए उस व्यक्ति के पाप को अपने बीच में स्वीकार करके उसके विरुद्ध कुछ नहीं कर रहे हैं।
And Paul is teaching them they have to be severe and to maintain the holiness of God's house and they have to put this man out.
तो पौलुस बड़े कड़क शब्दों में कहता है कि इस व्यक्ति के विरुद्ध में कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो पाप में अपने जीवन को बिता रहा है और कलीसिया से उसे बाहर रखे।
So Paul was saying, now listen, I'm not with you physically, but if I was, this is what I would do.
Paulus unse kehta hai, dekho main sharirik roop mein tumhare beech mein nahi hu, agar hota to main kya karta?
He says in verse 4 of chapter 5,
पांचवें अध्याय के चौथे पद में ऐसे कहता है।
He says now in the name of our Lord Jesus Christ, this is his authority.
उसका अधिकार देखिए, जब तुम हमारे प्रभु यीशु के नाम में एकत्रित हो,
एंड यू गैदर द असेंबली टुगेदर,
और जब तुम कलीसिया के रूप में इकट्ठे हो,
एंड माय स्पिरिट विद द पावर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वी डिलीवर सच अ वन अनटू सैतन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लैश that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus.
और आत्मा में मैं भी तुम्हारे साथ, तो हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ से ऐसा मनुष्य शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए कि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए।
So now notice the expression at the end of verse 5, the day of the Lord Jesus.
अब मैं चाहता हूं कि आप इस भाग को बड़े ध्यान से मन में रखें, प्रभु यीशु के दिन में।
Now to the second letter, chapter 1.
अब दूसरा कुरिन्थियों उसका पहले अध्याय में आइए।
Two Corinthians chapter 1.
दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय।
Verse 13. For we write none other things unto you than what ye read or acknowledge. And I trust ye shall acknowledge even to the end, as also ye have acknowledged us in part, that we are your rejoicing, even as ye also are ours in the day of the Lord Jesus.
जो तुम पढ़ते और समझते हो उसे छोड़ हम और कुछ नहीं लिखते, और मैं आशा करता हूँ कि तुम उस बात को पूर्ण रूप से समझ सकोगे जिसे तुमने आंशिक रूप से समझा है, कि जैसे हम तुम्हारे गर्व का कारण है वैसे ही तुम भी हमारे प्रभु यीशु के दिन में हमारे गर्व का कारण ठहरो।
Now, the connection between our last two readings and the first one might not be clear.
पहला भाग हमने जो पढ़ा है उसके साथ हमने दूसरा और तीसरा भाग को पढ़ा है, इनमें इनको अगर जोड़कर हम देखना चाहेंगे तो शायद कुछ असमानताएं हमें दिखे।
I don't know, you can just tell me now, Brother Sam, what is the, in 1 Corinthians chapter 4, where we read in verse number 3. Now, there, you see, in my English Bible, it is telling me, Paul says with me, it's a very small thing that I should be judged of you or of man's judgment. What does it say in
it's the same. Hindi? This meaning is the same.
Judgment also?
Yeah. Manaviya nyala mera nyay kare. Nyay means judgment.
All right. Now you see, that there is an instance where as students of the word, teachers of the word, you will have to go back to the original language to find what this means.
आप जो वचन के सीखने वाले हैं और सिखाने वाले हैं, हमारे लिए कई बार ऐसे संदर्भ आएंगे जहां पर हमें मूल भाषा में उसकी अर्थ को समझने की आवश्यकता आ सकती है।
I have spoken about this at length before, but I need to emphasize it, brethren. We have got to have the work and the discipline and the diligence to do this.
मैंने इसके बारे में आपसे विस्तृत रूप से कल भी बताया था, लेकिन प्रिय भाइयों, हम अगर ये काम वचन को सिखाना चाहते तो इस प्रकार की एक अध्ययन का क्रम और मेहनत हमारे जीवन में होना आवश्यक है जहां मूल भाषा में उसकी अर्थ को समझे।
You see, in two of the three references we have read the day of the Lord Jesus.
अभी तीन भाग हमने पढ़ा, उनमें से दो जगहों पर हमने पढ़ा है प्रभु ईशु मसीह का दिन।
And here in chapter 4 we've read of man's judgment.
और पद चौथे अध्याय में हम मनुष्य के न्याय के बारे में पढ़ते हैं।
Now the word judgment in my language and yours,
मेरे और आपके भाषा में जो न्याय शब्द है, जजमेंट है,
and the word day,
और जो दिन करके लिखा गया है,
are exactly the same word in the Greek language.
अगर आप यूनानी भाषा में देखेंगे तो ये दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है।
In the Greek language, man's judgment in chapter 4 of 1 Corinthians means man's day.
और यूनानी भाषा में चौथे अध्याय में जो मनुष्य का न्याय करके कहा गया है वो मनुष्य का दिन है।
And by now you're saying, oh brother, my head's hurting. You know, it's like the boy in the field, isn't it? You know, my head, you know.
अब आप कह रहे हैं भाई, अब तो मैं तो पूरा इधर उधर हो गया हूँ, मैं अपनी सिर पकड़ के बैठ चुका हूँ।
How can judgment and day mean the same thing?
न्याय और दिन, ये दोनों का एक ही अर्थ कैसे हो सकता है?
Well, you see, the way that in the Greek language the word day would be used,
अगर आप यूनानी भाषा को देखेंगे तो जो दिन शब्द है वो इस प्रकार से उसका प्रयोग होता है।
इट्स नॉट डिस्क्राइबिंग 24 आवर्स।
जो दिन कर कहा जाता है यूनानी भाषा में, वो 24 घंटों के दिन के बारे में नहीं कहा गया है।
इट्स डिस्क्राइबिंग ए पीरियड ऑफ टाइम विद अ सर्टेन कैरेक्टर।
वो एक लंबा ऐसा समय के बारे में कहा गया है जिस समय की एक विशेष चरित्र या योग्यता है।
वी टॉक अबाउट द ओल्ड डेज, डोंट वी?
कई बार हम कहते हैं हमारे पुराने दिन।
You know, and what we're really doing when we speak about oh the days of such and such, it's we're talking about the character of those days.
जब हम कहते हैं कि पुराने दिनों में ऐसा होता था, तो हम क्या कह रहे हैं? उन दिनों की कुछ विशेषताओं को हम बता रहे हैं।
You know, we would say, oh the children today, they're so disobedient.
हम ऐसा कहते हैं कि आज के बच्चे इतना शैतान है।
In my day, children had to do as they were told.
लेकिन हमारे दिनों में हमसे जो कहा जाता था हम वही करते थे।
In my day,
मेरे दिनों में।
Am I talking about 24 hours?
क्या मैं 24 घंटों का जो दिन उसके बारे में कह रहा हूँ?
No.
नहीं।
I'm talking about a period of time that was characterized by children's good behavior.
मैं उस युग या उस काल के बारे में कह रहा हूँ जहाँ पर बच्चों के जो चरित्र है अच्छे चरित्र के साथ उसकी तुलना करते हुए कह रहा हूँ।
And I am comparing this day with that day.
और मैं आज के दिनों में क्या हो रहा है, या जो आज का काल है उस काल के द्वारा उसकी तुलना कर रहा हूँ।
This period of time with that period of time.
युगों का ये समय के और जो पहली के समय है उसके साथ मैं तुलना कर रहा हूँ।
Paul is comparing man's day with the day of the Lord Jesus.
Paulus मनुष्य के दिनों को प्रभु के दिन के साथ तुलना कर रहा है।
A day in this sense of 1 Corinthians 4, man's day, man's judgment,
जब पहला कुरिन्थियों चार में मनुष्य का दिन या मनुष्य का न्याय कर जब हम कहते हैं,
Paul says to the Corinthians, now listen, I know that some of you are judging me.
पौलुस कुरिन्थियों को देखकर कहता है, देखो मैं जानता हूं तुम में से कुछ लोग मेरा न्याय कर रहे हैं.
And you are judging my motives.
और तुम मेरे उद्देश्यों का न्याय कर रहे हो.
You are coming to certain conclusions about my ministry.
और मैं जो सेवकाई कर रहा हूं उसके बारे में तुम कई बातों की कल्पनाएं कर रहे हो.
Well, says Paul, to me that's a little thing.
पौलुस उनसे कहता है, ये सब बातें मेरे लिए छोटी है.
It's a little thing for me to be judged either by you or by the standards of man's day.
इसलिए वो कहता है कि तुम्हारे द्वारा मेरा न्याय हो या मनुष्य के न्याय के जो मापदंड उसके द्वारा न्याय हो, इससे मैं विचलित नहीं हूं.
Man's day and therefore man's judgment of things is so limited.
मनुष्य का दिन या मनुष्य का न्याय उसकी सीमाएं होती है.
You see, he says in verse 5 of chapter 4,
चौथे अध्याय के पांचवे पद में पहले कुरिन्थियों का वो कहता है,
judge nothing before the time until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness and will make manifest the counsels of the heart.
इसलिए समय से पहले किसी बात का न्याय ना किया करो, वरन जब तक प्रभु ना आए तब तक ठहरे रहो, क्योंकि वो उन बातों को जो अंधकार में छिपी है प्रकाश में लाएगा और मनुष्यों की मन भावनाओं को प्रकट करेगा.
Man's day, he says, is characterized by darkness.
मनुष्य के दिनों को वो कहता है उसका जो विशेषता यह है कि वो अंधकार से भरा हुआ है.
Man's day is absorbed with physical things.
मनुष्य का दिन जो है वो शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा हुआ है.
Man cannot discern.
मनुष्य बातों का परख नहीं कर पा रहा है.
He can't see into the heart and into the mind and into the motives.
वो किसी के मन में, किसी के विचारों में, किसी के उद्देश्यों को भी भांप नहीं पा रहा है.
So now whether you judge me, you Corinthians,
इसलिए हे कुरिन्थियों, चाहे तुम मेरा न्याय करो,
or whether I am judged by the standards and the limitations of this day in which man is foremost,
या मेरा न्याय मनुष्य जब अपनी अपने कार्यों को कर रहा है उस सीमाओं के अंदर मुझे न्याय किया जा रहा है.
These things, says Paul, are of little thing, they're little things to me.
पौलुस कहता है ये सब मेरे लिए छोटी बातें हैं.
In fact, he says, I don't even judge myself.
पौलुस कहता है कि मैं तो अपना भी न्याय नहीं करता.
See, what he means is this really. He's thinking about motivation, motive for doing something.
वह विशेष रूप से इस बात को सामने रख, कोई भी बात हम जो करते हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य, हमारी भावनाएं क्या है.
I find, brethren, that as I seek to serve the Lord and the older I get,
प्रियो जब मैं प्रभु की सेवा करने कर रहा हूं और जैसा मैं बुजुर्ग होता जा रहा हूं,
that more and more every day I have to ask the Lord to purify my motive in serving him.
मैं पाता हूं कि हर दिन मुझे परमेश्वर से और अधिक प्रार्थना कर रहा है कि उसकी सेवा करने के पीछे मेरी मनोभावना क्या है.
What is my motive for serving him?
मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं उसके पीछे मेरी मनोभावना क्या है.
I want my motive to be the glory of his name.
मैं चाहता हूं कि मेरी मनोभावना ऐसे हो कि यीशु का नाम को महिमा मिले.
I want my motive to be the edifying and the building up of his beloved people.
मेरी मनोभावना ऐसी होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर के लोगों को आत्मिक बातों में ऊंचा उठाऊं.
But I still have a wicked heart.
लेकिन अभी भी मेरे अंदर एक दुष्ट हृदय है.
I'm saved by the grace of God.
मैं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उद्धार में आया हूं.
But when I got saved, the flesh wasn't removed and it wasn't improved.
लेकिन जब मेरा से उद्धार हुआ था, मेरा जो शरीर है वो पूर्ण रूप से दूर नहीं किया गया था या उसमें कुछ अच्छा ही नहीं किया गया था.
And there is a constant ongoing desire in my heart to promote myself.
इसलिए मेरे हृदय के अंदर एक भावना ऐसी है कि मैं अपने आप को थोड़ा ऊंचा उठाऊं.
And so if I quietly, or you, we quietly go and we, let's say we give a little gift to a sister or a brother in the Lord.
ऐसा सोच लीजिए कि आप या मैं चुपके से जाते हैं, एक भाई और बहन को कुछ दान देते हैं.
And we do it for the Lord and we do it for that brother or sister.
हम परमेश्वर के लिए करते हैं, उस भाई या बहन को हम उस दान को देते हैं.
But even then there can be something within my heart that is praising me for what I am doing.
ये करते वक्त भी मेरे और आपके मन के अंदर ऐसी एक भाव होती है जहां पर मैंने ये किया करके हम अपने आप की प्रशंसा करते हैं.
Maybe you find that as well.
हो सकता है आप ऐसा करते हैं.
What we are proving is as the scripture teaches that the heart of man is deceitful.
ये वास्तविक रूप से वचन जो हमें सिखाता है कि मनुष्य का हृदय जो है पूरा छल से भरा हुआ है.
And above all things desperately wicked.
और हर बातों में अत्यंत दुष्टता से भरा हुआ है.
Who can know it?
कोई उसको जान नहीं सकता.
That's your heart and mine right now.
अभी इस वक्त भी मेरा और आपका हृदय बिल्कुल ऐसा ही है.
Saved but still capable of every form of sin.
हम उद्धार पा गए लेकिन किसी भी दुष्ट पाप को करने के लिए अभी भी हम में सक्षमता है.
So I know what I would like my motive to be.
इसलिए हम जानते हैं कि हमारी मनोभावना क्या हो.
But I can never be sure what my motive is.
लेकिन हम कभी भी इसके बारे में निश्चित नहीं हो सकते कि उस पल पे मेरी मनोभावना क्या होगी.
And it must cast me upon the Lord that my motive be pure.
और ये प्रभु के ऊपर मुझे निर्भर होना होगा कि मेरा जो मनोभावना है वो शुद्ध हो, पवित्र हो.
You see, Paul was saying, you Corinthians are judging why I am saying or doing certain things.
पौलुस कुरिन्थियों को विश्वासियों को देखकर कहता है कि मैं जो कुछ कहता हूँ, जो कुछ करता हूँ, उसको देखकर तुम मेरा न्याय कर रहे हो.
As though you know what is in my heart and in my mind.
जैसे तुम जानते हो कि मेरे मन में और मेरे हृदय में क्या विचार हैं.
Listen, he said, you can't know that.
पौलुस ने उनसे कहा, देखो ये तुम कभी जान नहीं सकते.
I don't know what's in my own mind and my own heart.
क्योंकि मुझे स्वयं नहीं मालूम कि उस क्षण में मेरे मन में और मेरे हृदय में क्या है.
This is a feature of man's judgment, man's day.
ये मनुष्य का न्याय या मनुष्य के दिन की एक विशेषता है.
So says Paul, I am simply waiting, and one day when the Savior comes, then He alone will be able to discern why I did certain things.
इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं स्वयं इंतजार कर रहा हूं और एक दिन मेरा प्रभु आएगा और सिर्फ वो ही जान सकता है कि मैंने वैसा काम उस समय क्यों किया.
He has the judgment seat of Christ in view.
क्योंकि उसके सामने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का न्याय का सिंहासन दिखाई दे रहा था.
That is the place where the hidden things of darkness and the counsels of the heart will be made manifest.
क्योंकि वो जगह है जहां पर अंधकार में छिपी हुई प्रकाश में लाया जाएगा और मनुष्यों की मनोभावनाओं को प्रकट किया जाएगा.
So man's day, man's assessment of things is always going to be faulty.
मनुष्य का दिन या मनुष्य किसी बात के बारे में जो जो विचार में आता है कि ये ऐसा है वो हमेशा गलत होता है.
Not man's day, says Paul. We need the day of the Lord Jesus.
पौलुस कहता है कि मनुष्य का दिन नहीं, यीशु मसीह का दिन हमें चाहिए.
Now you see, in man's day, God has given into the hands of man the responsibility for government.
मनुष्य के दिन में परमेश्वर ने मनुष्य के हाथों में सरकार या अधिकार चलाने का अधिकार दिया है.
Whether it is government of the family,
चाहे हम परिवार में शासन कर रहे हैं.
Government of the nation,
चाहे हम इस देश पर शासन कर रहे हैं.
Government of the assembly,
चाहे हम कलीसिया पे शासन कर रहे हैं.
Government is put into the hands of man.
ये सारा शासन का अधिकार अभी मनुष्य के हाथों में दिया गया है.
God can intervene and deal, but generally he's given these things into the hands of men.
निश्चित रूप से परमेश्वर इन बातों में अपने इच्छा को प्रकट कर सकता है, लेकिन निश्चित रूप से आज के युग में परमेश्वर ने मनुष्य के हाथों में यह अधिकार दिया है.
On a national level,
हम अपने देश के इसमें देखें तो,
and the powers that be are ordained of God.
और जो शक्तियां परमेश्वर के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्त की गई है,
we might say why does God allow such corrupt officials, liars and thieves and men who are manifestly not doing what God has put them there for?
हम इस प्रकार से हमारे मन में विचार उठता है कि परमेश्वर ने जैसा किया है लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, शासक क्यों नहीं कर रहे, इतने बुरे, इतने नीचे, इतने गिरे हुए काम ये कैसे कर रहे हैं.
It is not that God is not interested.
इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर को इन सारी बातों में कोई रुचि नहीं या मतलब नहीं.
He is not ignoring these things.
इसका ये मतलब नहीं कि वो इन बातों को अनदेखा कर रहा है.
He is allowing man's day to run its course.
वो परमेश्वर अनुमति दे रहा है कि मनुष्य का दिन अपने रीति से खत्म हो जाए.
Remember in the Old Testament scriptures, God did not act until the cup of the Amorites was full.
हम जानते हैं पुराने नियम को जब पढ़ते हैं, जब तक अमोरियों का कटोरा भर नहीं गया परमेश्वर ने उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं किया.
God is allowing man to go through this day this period of time in which he's given him government.
परमेश्वर मनुष्य को अभी अनुमति दिया हुआ है, शासन उसे इसके अधिकार उसके अधिकार में दिया है, उसे जैसा चाहिए उसे करने दो.
And once that day is full,
और जब उसका कटोरा भर जाएगा,
God will bring it to an end.
परमेश्वर समाप्ति का रेखा खींच देगा.
Paul said, "We're living in man's day."
पौलुस कहता है, हम मनुष्य के दिन में जी रहे हैं.
So now we don't judge each other in the light of man's day.
इसलिए मनुष्य के दिन को आधार बनाकर हम में से कोई एक दूसरे का न्याय नहीं करते.
Remember, this ministry is to be practical.
मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सेवकाई ये प्रायोगिक होना है.
This is very practical.
और ये बात अभी हम सीख रहे हैं, ये प्रायोगिक है.
Because we do judge each other's motives about things, don't we?
क्योंकि कई बार हम एक दूसरे के कार्यों के मनोभावनाओं को हम न्याय करते हैं.
Not one of us brethren here is able to accurately discern our own motives.
क्योंकि हम में से कोई जो यहां बैठा है, मेरे मन की मनोभावना क्या है उसके बारे में एक सही निर्णय पे नहीं पहुंच पाएंगे.
And yet so often we believe we can easily discern the motives of others.
इसके बावजूद मैं और आप इस बात को करते हैं कि हम दूसरों की मनोभावनाओं को न्याय करने के लिए तैयार हो जाते हैं.
This brother said this about me because.
इस भाई ने मेरे बारे में ऐसा इसलिए कहा.
This brother is doing this because.
ये भाई ये सब काम को इसलिए कर रहा है.
And I've now, in God's goodness, been coming to India for 10 years.
और पिछले 10 वर्षों से प्रभु के अनुग्रह के कारण मैं भारत में आ रहा हूँ.
And God, in His goodness, has given us a great heart and love for the Indian brethren.
और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने मेरे हृदय में अपने अनुग्रह के द्वारा मेरे भारतीय मसीह भाइयों बहनों के प्रति बहुत बड़ा प्रेम दिया है.
But so often our hearts are sore when we see the way in which the brethren are almost consuming one another.
लेकिन कई बार मेरा हृदय दुख से भर जाता है, पीड़ा से भर जाता है, जब भाई लोग एक दूसरे को एक तरह से खत्म करने के लिए कार्य कर रहे हैं.
Where do these strifes come from, brethren?
ये सारे झगड़े और बुरी बातें कहां से आ रही है भाइयों?
Where do these things come from where one brother has his following and another brother has his following?
ये सारी भावनाएं कहां से आ रही है कि एक भाई को मैं देखता हूं उनके पीछे बहुत सारे लोग, दूसरे भाई को देखता हूं उनके पीछे बहुत सारे लोग.
Just the same problem as in Corinth.
कुरिन्थ में भी यही समस्या थी.
And brethren brief against each other.
और जो भाई लोग हैं एक दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ किसी से बोलते रहते.
And this judgment of one another.
और इस ये ऐसा बोलकर एक दूसरे के बारे में न्याय भी कर रहे हैं.
And Paul says to the Romans,
और पौलुस रोमियो को इस प्रकार से कहता है.
He says, "Don't you understand that we must all stand before the judgment seat of Christ?"
उनसे कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सबको प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा.
There the Lord will reveal things to me that I never knew about myself.
और तब वहां पर उस क्षण पे प्रभु मेरे जीवन में जिसके बारे में मैं जानता नहीं उन सारी बातों को प्रकट करेगा.
If my judgment of myself is so poor,
अगर मैं अपने बारे में जो न्याय किया हूं वो इतना कमजोर है,
then how can I rightly assess your motives for doing it?
तब मैं दूसरों की मनोभावनाओं को या को हम मैं कैसे उसके सार तक पहुंच सकता हूं?
God grant us to be humble.
परमेश्वर सहायता करे कि हम नम्र बन जाए.
In man's day.
मनुष्य के दिनों में.
Because man's day is very soon going to come to a close.
क्योंकि मनुष्य का दिन जल्दी ही बंद खत्म होने वाला है.
And instead of man's day, it's going to be the day of the Lord Jesus.
और तब मनुष्य का दिन के अलावा जगह पर प्रभु यीशु मसीह का दिन शुरू होगा.
And that's why he brings in that term in chapter 5.
इसीलिए पांचवें अध्याय में उस भाग को वो लेकर आता है.
You see, in chapter 4, or rather in the beginning of chapter 5, the Corinthians, they think that they are being spiritual and that they are being tolerant by allowing this sinful man to stay in their midst.
जब पांचवें अध्याय के आरंभ में हमें ऐसा समझ में आता है कि कुरिन्थ के विश्वासी इस व्यक्ति के पाप को सहकर एक तरह से अपने आप को बहुत ही आत्मिक समझ रहे थे.
Paul says that's man's judgment.
पौलुस कहता है तुम जो कर रहे हो ये मनुष्य का न्याय है.
Those are the things of man's day.
ये मनुष्य के दिनों में ऐसी ऐसी बातें होती है.
Now, although we are living in man's day, he says, brethren, we should be behaving in the light of the coming day of the Lord Jesus.
प्रिय वो कुरिन्थ का विश्वासियों कहता है भले ही मनुष्य के दिनों में रह रहे हैं लेकिन हमें बातों को ऐसा करना है जैसा जो प्रकाश हमें परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के दिन के उस रूप में मिलता है.
This man's sin should be dealt with.
ये व्यक्ति का जो पाप है इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए.
With particular apostolic authority, said Paul, I would hand this man over back into the power of the devil himself.
प्रेरित के जो अधिकार उसे प्रभु ने दिया है उसके आधार पर वो कहता है कि मैं इस मनुष्य को शैतान के सामर्थ के हाथों में सौंप दूंगा.
Salvation brought that man out from the power of the devil.
उद्धार ने उस व्यक्ति को शैतान के अधिकार से छुड़ाकर बाहर लाया.
Well, says Paul, I would put him back into it.
पौलुस कहता है कि मैं उसे वापस उसके हाथों में दे दूंगा.
For the destruction of the flesh.
ताकि उसका शरीर के विनाश हो जाए.
Not to destroy the man.
ताकि उस व्यक्ति का नाश ना हो.
But to make him see the vileness of the sin and the gravity of the sin that he has committed.
ताकि उसके शरीर के शिक्षा के द्वारा उसके जीवन में उसने जो पाप किया उसकी भयंकरता को उसकी कठोरता को वो समझ पाए.
It's not the destruction of the body, it's the destruction of the flesh, that sinful motive. Force within him.
उसका जो शारीरिक भावना है मनोभावना है उसकी समाप्ति के लिए पौलुस उसे इस प्रकार की अवस्था में देना चाहता है.
So that he might be preserved.
ताकि वह बच जाए.
In the day of the Lord Jesus.
प्रभु के दिन में उसका उद्धार हो जाए.
What he's really saying, he's not suggesting that this man, once saved, is now going to be lost. He's not saying that.
वास्तविक रूप से हम ऐसा ना समझे कि यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो एक बार उद्धार पा चुका है, उसका उद्धार नष्ट हो रहा है.
But he's saying, now look, the day of the Lord Jesus is coming.
लेकिन वो इस प्रकार से कह रहा है कि प्रभु यीशु का मसीह का दिन आ रहा है.
That man must not be allowed, unchallenged, to move from the day of man into the day of the Lord Jesus.
इसलिए हमें ऐसी अनुमति नहीं देना है कि एक मनुष्य के दिन से लेकर निकलकर प्रभु के दिन में बिना किसी चुनौती का पहुंच जाए.
And that sin be unjudged.
और उसका जो पाप है उसका न्याय ना किया जाए.
We are living in the day of man.
हम मनुष्य के दिनों में जी रहे हैं.
But the day of the Lord Jesus is coming.
लेकिन प्रभु यीशु मसीह का दिन आ रहा है.
So now we look forward to that day. And it makes us judge the sins of today.
इसलिए हम प्रभु के दिन को हमारे सामने रखते हुए मनुष्य के जीवन के पाप का न्याय करते हैं.
So we judge sin in ourselves and in the assembly in the light of the coming day of the Lord Jesus.
इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो दिन आने वाला है उसके प्रकाश में आज हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में और कलीसिया में जो पाप है उसका न्याय करते हैं.
Now we've got to understand this very clearly.
इसे हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है.
As far as our sins are concerned,
जहां तक हमारे पापों की बात है,
we are as ready for heaven now as we can ever be.
हम आज पूर्ण रूप से प्रभु के भवन को में जाने के लिए तैयार होकर बैठे हैं.
Only one thing has to happen to you and me if the rapture comes in the next 2 minutes.
हमारे जीवन में बस एक ही बात होना चाहिए अगर हम अगले 2 मिनट में उठा लिए जाएंगे तो.
That is, these bodies have to be changed.
कि हमारा ये जो शरीर है ये रूपांतरित होना है.
That is the only change necessary.
अब हमारे जीवन में बस यही परिवर्तन की आवश्यकता है.
Judicially, as far as the matter of my sins is concerned, I am ready for heaven now.
जहां तक मेरे यार आपके पापों की बात आती है हम स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार किए गए हैं.
Unconfessed sin at the time of the rapture.
और जब हम उठा लिए जाएंगे अगर कोई ऐसा पाप है जिसका हमने पश्चाताप नहीं किया.
It's not going to stop us going.
वो हमें स्वर्ग जाने से नहीं रोकेगा.
And it is not going to be raised at the judgment seat of Christ.
और प्रभु के न्याय के सिंहासन के सामने ये बातें उठाई भी नहीं जाएगी.
But instead of me being able to stand blameless before the Lord and only to be rewarded, it would be to see everything stripped away. Me saved, yes, but so as by fire.
मैं प्रभु के सामने निष्कलंक निर्मल होकर खड़ा रहूंगा लेकिन मुझे जो कुछ मिलना है वो सब मेरे पास से छीन लिया जाएगा. मैं खाली वहां प्रभु के सामने खड़ा रहूंगा.
You see, that's why in the second letter when Paul writes them, we read the verse in chapter 1.
इसलिए प्रेरित पौलुस दूसरी पत्री में पहले अध्याय में जब उसने लिखा कुरिन्थियों को,
he speaks about his rejoicing in them in the day of the Lord Jesus.
वो प्रभु के दिन में उनके विषय में कितना आनंदित होगा उसके बारे में लिखता है.
As far as Paul was concerned,
जहां तक पौलुस के संदर्भ में देखे,
to be able in the day of the Lord Jesus to look at the Corinthians as people he had led to Christ.
प्रभु के दिन में कुरिन्थियों के विश्वासियों को जिनको उसने प्रभु में लाया उनको देखकर,
that was one thing.
देखने में उससे बड़ा आनंद है.
But he said, I would much prefer in the light of the day of the Lord Jesus I would much prefer you to be there as those who've been preserved in godliness.
प्रभु पौलुस कहता है कि लिए दूसरी सबसे बड़ा अंक का विषय तब होगा जब परमेश्वर के दिन के सामने दिन में वो कुरिन्थियों के विश्वासियों को परमेश्वर के सारे भलाइयों में गॉडलीनेस में उनको वहां पाएगा.
See, the work of God in salvation is not just to save the soul.
उद्धार में प्रभु परमेश्वर का काम एक आत्मा को बचाना ही नहीं है.
It is to change the life so it becomes a life lived for his glory.
वो ये करना चाहता है कि हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए और उसकी महिमा के लिए बिताने वाले एक जीवन में दिखाई दे.
It is to bring about conformity to Christ in the life of the believer.
और इतना ही नहीं, एक विश्वासी के जीवन में वो प्रभु यीशु मसीह के समान ज्यादा दिखे, ऐसा वो बन जाए.
Paul wanted to see these Corinthians come into the good of divine order.
और प्रेरित पौलुस चाहता था कि ये कुरिन्थ के विश्वासी परमेश्वर का जो ईश्वरीय क्रम है या आत्मिक क्रम है उसमें वो दिखाई दे.
He wanted to see them growing and fruitful.
वो चाहता था कि वो बढ़े और इतना ही नहीं वो फल लाए.
And he said, brethren, as I see you going on in the things of the Lord, oh, what a rejoicing that would be in the day of the Lord Jesus.
इसलिए वो कहता है कि हे प्रिय भाइयों, जब तुम प्रभु के कार्यों में बढ़ रहे हो, प्रभु के दिन में मुझे कितना आनंद प्राप्त होगा.
Is that your desire, dear brother, for God's people today?
प्रिय भाइयों, क्या आपकी भी इच्छा परमेश्वर के लोगों के लिए यही है या नहीं?
You see, an evangelist is not a man who can simply boast about how many people he's led to Christ.
देखिए, एक प्रभु का सेवक जो सुसमाचार प्रचारक है वो एक ऐसा व्यक्ति नहीं जो सिर्फ ये कहता रहे कि मैंने इतने लोगों को प्रभु में ले आया है.
When people are saved, it's like a child being born.
जब एक कुछ लोग उद्धार में आते हैं तो इसका अर्थ हुआ एक बच्चे का जन्म हुआ.
Would we imagine a woman, a mother, who's maybe born 10 children?
हम ऐसा सोचे एक माँ जिसने 10 बच्चों को जन्म दिया है.
And she said, you know, I've been a great mother, tremendous mother, 10 children I have born.
वो ये कहे कि देखो मैं तो बहुत बड़ी माँ हूँ, बहुत महान हूँ क्योंकि मैंने 10 बच्चों को जन्म दिया है.
And you say, that's wonderful, ma, show me them.
और आप कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं उनको देखना चाहता हूँ.
Oh, none of them survived.
वो कहेंगे नहीं नहीं उनमें से कोई बच नहीं पाया.
Oh, that is dreadful. How did none of them survive?
ये तो बहुत दुख की बात है, ऐसा कैसे हुआ कि सब मर गए?
Well, I never fed them.
कहे कि मैंने कभी उनको खिलाया नहीं.
And I never looked after them.
मैं कभी उनका देखभाल मैंने नहीं.
Motherhood is about bringing babies into the world, isn't it?
माँ बनना है मतलब बच्चों को इस पृथ्वी पर लाना, इतना ही है क्या?
So of course it's not. No, that's the beginning of it.
निश्चित रूप से वो नहीं है, वो तो बस एक आरंभ है.
Motherhood is about nurturing them and caring for them and sacrificing for them and raising them to be men and women.
जो माता बनना है, माँ बनना है, उसका मतलब उनकी देखभाल करना, उनको खिलाना, उनको सही ढंग से पालन पोषण करना, ये सारी बातें उसमें हैं.
That is the work that we're involved in with God.
प्रिय प्रभु के दासों, हम ऐसे ही कार्य में आज लगे हुए हैं.
That's how Paul looked at those who he was used of God to bring to salvation.
पौलुस ने भी जिनका उपयोग उसने प्रभु में लाने के लिए किया उनके साथ उसने वैसे ही व्यवहार किया.
Didn't he say to the Thessalonians, he said, I am speaking to you as a nursing mother.
क्या आपको याद नहीं है, हम वो थसलोनिकियों को लिखते हुए कहता है जैसे एक माता जो बच्चों को दूध पिलाते उनके समान मैं तुम्हारा देखभाल कर रहा
हूं. In a maha prophecy conference, sometimes it can just become factual.
ये जो महाप्रोफेसी कॉन्फ्रेंस है इसमें कई बार हम कुछ फैक्ट्स या कुछ सत्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त करके जा सके.
दिस इज एज रियल एज इट गेट्स. यू एंड आई आर मूविंग फ्रॉम द मैन्स डे इनटू द डे ऑफ द लॉर्ड जीसस.
लेकिन यहां पर जब बैठेंगे हर सत्यों को इस आधार पर देखें कि हम मनुष्य के दिन से निकलकर पर प्रभु के दिन में जाने वाले हैं.
एंड इन द डे ऑफ द लॉर्ड जीसस वी विल आंसर टू हिम.
और प्रभु के दिन में हमें सिर्फ उसको उत्तर देना है.
As to the things we have done amongst the brethren down here.
कि हम भाइयों के साथ हमने यहाँ पर क्या किया?
Oh, this brother is so busy.
ये भाई तो बहुत व्यस्त है.
That's man's judgment.
वो मनुष्य का न्याय है.
Maybe everything he ever did in his busyness is going to be consumed by fire at the judgment.
हो सकता है इस भाई ने इतना प्रभु के लिए व्यस्त हो के जो कुछ भी किया है प्रभु के न्याय के दिन वो आग में जल जाएगा, सब कुछ भस्म हो जाएगा.
God help us in this week to understand that I must personally face my Savior in the day of the Lord Jesus.
इस एक सप्ताह में हम कम से कम इस सत्य के पास पहुंच जाए कि वो दिन आ रहा है जब मुझे अपने उद्धारकर्ता को उसके मुंह पर देखकर उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा.
You see why Paul uses this title, guided by the Spirit?
और आप जानते हैं क्यों पौलुस ने आत्मा के नियंत्रण में इस प्रयोग का उपयोग किया है?
Man's day.
क्योंकि ये मनुष्य का दिन है.
measured against the day of the Lord Jesus.
और इसकी तुलना एक दिन इसका मापदंड परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दिन के साथ हमें इसका माप को देखना है.
The title the day of Christ comes in the Philippian epistle.
मसीह का दिन ये फिलिपियों की पत्री में हम पाते हैं.
And we'll just turn to look at some references there.
और वहां पर कुछ भागों को हम देखेंगे. फिलिपियों की पत्री.
Philippians chapter 1.
फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय.
Paul is giving thanks upon his remembrance of the Philippian believers before God.
मसीह विश्वासियों को याद करते हुए फिलिपियों के विश्वासियों को याद करते हुए प्रेरित पौलुस प्रभु को धन्यवाद दे रहा है.
And particularly verse 5, for your fellowship in the gospel from the first day until now, being confident of this very thing.
और क्योंकि पहले ही दिन से आज तक तुम सुसमाचार में मेरे सहभागी रहे हो.
That he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ.
क्योंकि उसने
क्योंकि
मुझे इस बात का निश्चय है कि जिसने तुम में भला कार्य आरंभ किया है वही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूर्ण भी करेगा.
So now Paul is speaking to them about the extent of their work as an assembly of God's people.
इसलिए पौलुस मसीह के लोग होने के कारण उन्होंने कलीसिया में जो काम किया उसके बारे में बता रहा है.
From the first day he said.
वो कहता है कि पहले दिन से.
What was the first day in his relationship with the believers at Philippi?
फिलिपियों के विश्वासियों के संबंध में उसका पहला दिन कौन सा है?
He saw Lydia saved.
उसने लुदिया के उद्धार को देखा था.
That was a great thrill to Paul, you know.
पौलुस के लिए ये बहुत बहुत ही जोश दिलाने वाली बात थी.
Back there in Acts chapter 16.
लेकिन जब हम प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय में हम पाते हैं.
And as Paul and his brethren had been exercised to move on in the work of the Lord, they had thought to come eastwards.
प्रेरित पौलुस और उनके जो अन्य भाई हैं प्रभु की सेवा करते हुए आगे बढ़ रहे थे वो पूर्व की ओर आने की इच्छा रखते हैं.
But the Spirit had suffered them not.
लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उसे उस काम को करने से रोका.
Closed the door.
और रास्ते को बंद कर दिया.
Then Paul had the dream, the man of Macedonia.
और तब पौलुस को मैसेडोनिया के उस पुरुष के बारे में स्वप्न आया.
He said, "Come over and help us."
उसने कहा कि वो कह रहा था कि हमारे पास आओ हमारी मदद करो.
They were in the west.
और वो पश्चिम में थे.
Paul and his brethren were trying to go east.
पौलुस और उसके भाई संगी पूर्व की ओर जाना चाहते थे.
The Lord said, "No, I want you to go west."
लेकिन प्रभु ने कहा पूर्व में नहीं पश्चिम में जाओ.
And isn't it lovely that when they obeyed and they went west?
और ये कितना आनंद का विषय है कि जब उन्होंने आज्ञा को माना और पश्चिम की ओर गए.
The first woman they saw saved, Lydia in Philippi.
तो पहली स्त्री जिसका उद्धार हुआ लिडिया फिलिपाई में थी फिलिपी में थी.
She came from the east, Thyatira.
वो वास्तविक रूप से पूर्व से आई हुई थी.
You're getting corrected here?
Yeah.
All right. Have we got the point that they went west? But their first convert was a lady from the east.
उनको वो परमेश्वर के द्वारा मना करने का पूर्व से पश्चिम की ओर गए लेकिन पश्चिम में जो पहले व्यक्ति प्रभु में आई वो पूर्व की पूर्व में रहने वाली थी.
You see how kind the Lord is that he used their desire, but when he moved them in accordance with his sovereignty, he honored their desire by saving that woman.
लेकिन आप देखिए कि परमेश्वर ने अपने सर्वाधिकार के द्वारा उन्हें एक जगह जाने से रोककर दूसरे जगह की ओर जब ले गया तब हम पाते हैं कि उसने उनके मन को कामनाओं को भी पूरा करके दिया.
Incidentally, 10 years ago,
अगर वास्तविक रूप से देखो 10 वर्ष पहले,
I had 3 or 4, we had been fairly recently commended to full-time work for the Lord.
हम में से 3-4 लोग को प्रभु की सेवकाई के लिए हमने अलग किया.
I had 3 or 4 months of meetings arranged in Canada and the US.
और तब मुझे कनाडा और यूएसए में 3-4 महीनों की मीटिंग थी.
The brethren were phoning me.
और वहां के भाई लोग मुझे बुला रहे थे.
Brother, have you arranged your air ticket yet?
वो मुझसे पूछ रहे थे भाई आपने अपना एयर टिकट तैयार किया क्या?
No.
मैंने कहा नहीं.
Why, brother?
क्यों भाई?
Do you know, I'm really not sure the Lord wants me to come.
मैंने कहा कि मुझे अभी तक निश्चय नहीं हुआ कि प्रभु मुझे वहां भेजना चाहता है या नहीं आपके पास.
Brother, it's all arranged.
उन्होंने कहा भाई हम तो यहां पर पूरी तैयारी कर चुके हैं.
And the nearer the meetings became, the emptier my heart became.
और जैसे मीटिंग के दिन करीब आते गए मेरा मन खाली होता गया.
I was trying to go west.
मैं पश्चिम में जाने की कोशिश कर रहा था.
One day, and I still don't know why I did it.
लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मुझे आज भी नहीं मालूम मैंने ऐसा क्यों किया.
I lifted the phone.
मैं फोन उठाया.
Is that you, Brother Michael Brown?
मैंने फोन किया, भाई माइकल ब्राउन, आप ब्रदर माइकल ब्राउन है क्या?
Yes, it is.
उन्होंने कहा हाँ.
Brother Michael.
भाई माइकल.
When are you going to India again?
आप इंडिया कब जा रहे हैं?
2 months time.
उन्होंने कहा कि 2 महीने में मैं जाऊंगा.
Brother, if ever you want a younger man to come with you to carry your bag for you, you let me know.
मैंने उनसे कहा कि भाई अगर कोई जवान आपका बैग उठाकर आपके साथ उस सेवकाई में जाए, उसके लिए आप चाहते हैं तो मैं तैयार हूं.
He said, "Praise the Lord."
उन्होंने कहा praise the Lord.
Whoa, this was down the phone.
और आपको मालूम है ये फोन पे उन्होंने ऐसा कहा.
You heard Michael shout?
आपने अगर माइकल ब्राउन को चिल्लाते हुए सुना है क्या कभी?
It's almost like the shout of the Michael.
तो मिखाइल का जैसा चिल्लाहट होगा वैसा उनका चिल्लाना है.
Praise the Lord.
Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो.
Why, brother?
क्यों भाई?
He said, when the phone rang.
उन्होंने कहा कि जब तुम्हारा जब फोन बज रहा था.
I was on my knees asking the Lord to burden your heart to come with me to India.
मैं घुटनों पे प्रभु यीशु से प्रार्थना कर रहा था कि वो तुम्हारे मन में एक इच्छा डाले कि भारत में तुम मेरे साथ आओ.
And so assuredly gathering that we were in the mind of the Lord.
और जब परमेश्वर के मन के अनुसार हम एक रूप से कैसे हो गए हम सोच रहे थे.
Instead of going west,
पश्चिम में जाना था.
It came east.
लेकिन हम पूरब में आ गए.
See, the Lord still works like that now.
प्रियो आज भी प्रभु ऐसा काम कर रहा है.
And you can be absolutely sure of it, brethren.
और इसके बारे में भाई आप लोग निश्चित रह सकते हैं.
The steps of a good man are ordered by the Lord.
क्योंकि एक भले पुरुष के कदमों को प्रभु क्रम में रखता है.
You can be very confident about that.
और हम इसके बारे में पूर्ण हिम्मत के साथ आगे बढ़े.
And the Lord had ordered Paul's steps to Philippi.
परमेश्वर ने फिलिपिया की और पौलुस के पैरों को क्रम में लगाया.
And the day that Lydia was saved, a good work was begun.
और जिस दिन लिडिया का उद्धार हुआ, एक अच्छा काम का शुरुआत हुआ.
The good work he's speaking of was that when Lydia's heart was opened and she trusted the Lord.
जो भले कार्य के बारे में वो कह रहा है, जब लिडिया ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसका हृदय खुल गया.
The first thing she then did was open her home.
जो पहला काम उसने किया है, उसने अपने घर के द्वार को खोल दिया.
And she gave fellowship to the Lord's servant.
और उसने प्रभु के लोगों को सहभागिता की.
And Paul says to the Philippians.
और पौलुस फिलिपियों के विश्वासियों को कहता
है. He says that fellowship in the gospel has gone on from the first day until now.
और वो कहता है कि पहले ही दिन से आज तक तुम सुसमाचार में मेरे सहभागी रहे हो.
You younger Indian brethren have got a very lovely ministry in helping the older servants of the Lord.
आप जो भारत में रहने वाले जो जवान भाई बहन है, जो भाई हैं, जो बुजुर्ग प्रभु के सेवक हैं, उनको मदद करने की आप में एक बहुत बड़ी गुण को मैंने देखा.
It's very nice to see it in action, how that the younger men will assist the older men.
और ये देखकर मुझे बड़ा हर्ष होता है कैसे जवान भाई जो बुजुर्ग भाई हैं उनको सेवकाई में सहभागिता दे रहे हैं.
That's fellowship in the gospel.
ये है सुसमाचार में सहभागिता.
Lydia was not allowed by divine order to preach.
लिडिया को परमेश्वर के उस ईश्वरीय क्रम के कारण अनुसार प्रचार की अनुमति नहीं थी.
But she had fellowship in the gospel.
लेकिन सुसमाचार में वो सहभागिता रख पा रही थी.
And there were sisters and there were men who were not naturally able even to stand and preach, but they can have fellowship in the gospel.
और कई ऐसे भाई हैं और बहन हैं जो खड़े होकर प्रचार तो नहीं करते, लेकिन सुसमाचार में बहुत रूप से सहभागिता रखते हैं.
And he said that good work that began on the day I saw Lydia saved.
इसलिए वो कहता है कि वो भला कार्य उस दिन में जब शुरू हुआ जब लिडिया उद्धार में आई.
And I saw that jailer saved.
और मैंने देखा कि कैसे वो जेलर जेल का अधिकारी बंदीगृह का अधिकारी उद्धार में आया.
Thrilling work that began in Philippi.
और फिलिपाई में इतना रोचक जो सेवकाई शुरू हुई है.
Did Paul start the work?
क्या पौलुस ने उस सेवकाई को शुरू की?
Look what he says in verse 6 of chapter 1.
देखिए पद 6 में वो क्या कहता है.
I'm very assured of this very thing, he says, that he which began a good work in you.
मुझे इस बात का विश्वास है जिसने तुम में भला कार्य आरंभ किया.
Will perform it, that is, he will bring it to completion at the day of Jesus Christ.
वही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूर्ण भी करेगा.
Who began the work? Not Paul.
किसने भले कार्यम कारम किया? पौलुस ने? नहीं.
Paul said the Lord began the work.
पौलुस कहता है प्रभु ने किया ये काम.
I was privileged to be part of it.
मैं तो प्रभु के इस काम में बस एक सहभागी था.
This wasn't Paul the apostle and Lydia the new convert.
ये सिर्फ प्रेरित पौलुस और लिडिया जो नए विश्वास में आई उनकी बात नहीं है.
This was the work of the Lord.
ये जो काम हुआ है ये प्रभु का काम था.
Paul was used.
पौलुस का उपयोग प्रभु ने किया.
Lydia was used.
लिडिया का उपयोग किया.
The jailer was used.
जेलर का उपयोग किया.
Isn't the Lord wonderful?
क्या परमेश्वर कितना श्रेष्ठ है हमारा परमेश्वर.
His work, brethren.
प्रियो हम जान लीजिए उसका काम है.
Now don't just nod your head and agree with the doctrine. We want you to agree with it in your life.
मैं आपसे कहता हूं अपने सिर को हिलाकर आप ये डॉक्ट्रिन सही है ये ना कहे अपनी जिंदगी में इसका अनुसरण भी हम करें.
It's the Lord's work.
क्योंकि जो भी काम हम कर रहे हैं ये प्रभु का कार्य है.
Don't you dare write your name over the top of it.
हम उसके ऊपर कभी भी अपना नाम ना लिखे.
You're like me.
आप मेरे समान.
You're nobody.
आप कुछ नहीं है.
Except by what grace has made you. Except but what grace has made you.
Okay, सिवाय कि परमेश्वर के अनुग्रह ने आपको आज क्या बना के रखा है.
When I first came into a local assembly when I was newly married.
जब मेरा नया विवाह हुआ था और मैं एक स्थानीय कलीसिया में आया.
And an old man, an elder in the assembly, he came to me.
कलीसिया के एक बुजुर्ग भाई मेरे पास आए.
Shook my hand.
उन्होंने मुझे हाथ दिया अपना.
Young brother, we're delighted to have you in the assembly.
उन्होंने कहा हे जवान भाई आप हमारी कलीसिया में आए हमें बड़ा हर्ष है.
He says, I want one thing to be very clear.
लेकिन उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं.
I've been in this assembly for 62 years.
मैं इस कलीसिया में अभी 62 साल हो गए मेरे.
For you, this is the first day.
तुम्हारे लिए ये पहला दिन है.
I want you to know that in this assembly.
मैं चाहता हूं कि तुम इस सत्य को जान लो कि इस कलीसिया में
यू हैव जस्ट एज मेनी राइट्स एज आई डू.
इस कलीसिया में जितना अधिकार मुझको है तुमको भी आज उतना ही अधिकार है.
रियली ब्रदर really,
मैंने पूछा आप सच कह रहे हैं.
Yes, he said, you have just as many rights as I do.
उन्होंने कहा कि 62 वर्ष से जो मैं हूं मुझको जितना अधिकार है उतना ही अधिकार तुमको भी आज से इस कलीसिया में है.
Absolutely none.
कुछ और कुछ इसके अलावा कुछ नहीं.
You have no rights.
आपको कोई अधिकार नहीं.
I have no rights.
मेरा कोई अधिकार नहीं.
We are bond servants of the Lord Jesus.
हम यीशु मसीह के गुलाम हैं.
He was a godly man.
वह परमेश्वर का मनुष्य था.
We would have thought 62 years in one assembly.
हम सोचेंगे कि 62 साल एक कलीसिया में रहा है.
We would have said it's his assembly.
हम ये कहेंगे कि अरे ये इनका कलीसिया है.
He said no, it's the Lord's assembly.
उन्होंने कहा नहीं ये मेरा नहीं है ये प्रभु का कलीसिया है.
Need to remember that.
हमको भी हर एक व्यक्ति को ये बात समझना है.
We need to put that into practice.
हमें उसको अपने जीवन में प्रायोगिक करना है.
It's the Lord's assembly.
ये प्रभु का कलीसिया.
And he that has begun the good work.
और उसने जो हमारे जीवन में भले कार्यों को किया है आरंभ
किया. He's going to continue it until the day of Jesus Christ.
वही उसे मसीह के दिन तक भी पूर्ण भी करेगा.
One more verse and we'll finish.
एक और पद को पढ़कर हम समाप्त करेंगे.
Because we're continuing the subject in the next session, God willing, as we speak about the day of the Lord as well.
अगले सेशन में भी हम इसी विषय पर अपने अध्ययन को जारी रखेंगे.
And further into the Philippian letter, just a few verses down, verse 9. Chapter 1.
फिलिपियों की पत्री पहले अध्याय उसके नीचे नौवें पद से हम पढ़ेंगे.
This I pray that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment.
मेरी प्रार्थना यह है कि तुम्हारा प्रेम सच्चे ज्ञान और पूर्ण समझ सहित निरंतर बढ़ता जाए.
Now listen, this is what he's saying to them. He's saying, now you Philippian believers, I know from experience are very, very loving people.
प्रेरित पौलुस फिलिपियों को संबोधित करते हुए कहता है, हे फिलिपियों के भाइयों, मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि तुम बहुत प्रेम से भरे हुए लोग हो.
You're kind, you're generous, you're loving.
तुम प्रेम से भरे हो, तुम दूसरों की सहायता करने के लिए और मदद करने के लिए तत्पर और तैयार हो.
Now he said, sometimes there can be a danger with that.
प्रेरित पौलुस कहता है लेकिन एक खतरा भी है इसके साथ.
Sometimes it means that things which ought to be put right are not put right because of love for one another.
कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बातें जो तुम्हारे बीच में गलत है उसे ठीक करना है लेकिन एक दूसरे के प्रति जो प्रेम के कारण वो ठीक नहीं कर पा रहे हो.
He says in verse 9, now I want that love to continue to grow.
वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा प्रेम बढ़ता रहे.
But within the guiding limitations of knowledge and good judgment.
लेकिन ये प्रेम सच्चा ज्ञान और पूर्ण समझ सहित निरंतर बढ़ता रहे.
Sometimes a particular flower will grow profusely.
कई बार हम देखते हैं कि कोई फूल बहुत बड़ा जल्दी बढ़ जाते हैं.
इफ यू लेफ्ट इट अनटेंडेड इट वुड कवर द होल गार्डन.
और हम जानते हैं कि अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो पूरे बगीचे में फैल जाते हैं.
सो अ बाउंड्री इज सेट फॉर इट.
इसलिए उस जो फूल उगने वाले उस पौधे के लिए एक सीमा रखी जाती है.
पॉल सेज दैट देयर नीड्स टू बी अ बाउंड्री ऑफ नॉलेज एंड गुड जजमेंट in which your love can blossom and grow more fully.
प्रेरित पौलुस कहता है कि एक ऐसी सीमा रेखा होनी चाहिए या बाउंड्री होना चाहिए जो सच्चा ज्ञान और पूर्ण समझ का होना चाहिए जिसके अंदर तुम्हारे बीच का प्रेम बढ़ता है.
That ye may approve things that are excellent.
ताकि तुम जो उत्तम है उसकी परख कर पाओ.
Quite literally he says I want you to be able to discern between things that differ.
वो कहता कि जिन बातों में तुम एक नहीं हो पा रहे हैं उन बातों को समझने की तुम कोशिश करो.
Want you to have a very clear perspective on doctrine.
पहली बात है उपदेश सत्यों के ऊपर हमारा ज्ञान अच्छा होना चाहिए.
Let your full love be balanced with the full knowledge of the doctrine of God.
कि तुम्हारा संपूर्ण प्रेम परमेश्वर के उस संपूर्ण उपदेशों के साथ मिला हुआ हो.
And it's with this in view.
और इन बातों को ध्यान में रखते हुए
that ye may be sincere and not having been led into error at the day of Christ.
ताकि
end of verse 10. That you may be sincere.
मसीह के दिन तक पूर्णतः सच्चे और निर्दोष बने रहो.
Until the day of Christ. So now, what he has in view once again is the day of Christ.
मसीह के दिन. फिर से उसके मन में यही विचार है. वो मसीह के दिन के बारे में बता रहा है.
He has in view the time when now the Philippians are not under the rule of Rome as they were in Philippi. It was a Roman colony.
वो फिलिपियों के विश्वासियों को ये कह रहा है कि तुम ऐसा मत सोचो कि अभी तुम रोम साम्राज्य के अधीन है. वास्तविक रूप से उसमें फिलिपी के लोग रोमी साम्राज्य के अधीन थे.
They're not under the gaze of Caesar.
वो कैसर के दृष्टि के अधीन नहीं है.
They're under the gaze of Christ.
लेकिन उन्हें ध्यान देना है वो मसीह के दृष्टि के अधीन है.
Live for that, he said.
और उस बात को सामने रखते हुए अपने मसीही जीवन को बिताओ.
I want you to be sincere.
मैं चाहता हूं कि तुम सच्चे मन वाले हो.
It's a very special word that he uses there.
इसलिए वहां पर एक बहुत ही अच्छे शब्द का उपयोग किया है.
The literal translation of the Greek word is.
और जो ग्रीक यूनानी शब्द है उसका इस प्रकार से अर्थ निकलता है.
Judged by sunlight.
उसका अर्थ यह है जब हम कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो न्याय किया गया है.
Judged by sunlight.
सूर्य के प्रकाश के द्वारा कैसा न्याय होता है.
Why did he use that expression?
उसने उस पद का प्रयोग क्यों किया.
Well, I understand that in Philippi, like all these other places that were full of idols.
जैसे मुझे समझ में आता है कि उस समय जो अन्य प्रदेश थे वैसे फिलिपाई में भी बहुत सारे मूर्तियां थी.
There were guys there and they were making idols for the people to buy.
ये लोग वहां पर मूर्तियों को बनाते थे जिसे लोग खरीदते थे.
Many of them they would make out of marble.
और बहुत से लोग मूर्तियों को मार्बल में से बनाते थे, संगमरमर से.
इमेजेस ऑफ डिफरेंट डीटीज.
और अलग अलग देवी देवताओं के वो मूर्तियां बनाते थे.
सो नाउ व्हाइल ही इज वर्किंग ही स्लिप्स विद हिज चिजल.
तो जब वो उन मूर्तियों पर काम करता है कई बार धोखे से वो कहीं ठोकर लग जाता
है. एंड ही लीव्स अ बिग स्क्रैच अ बिग स्कोर अक्रॉस दिस आइडल.
और वहां पर उस मूर्ति पे एक लकीर खिंच जाता है.
व्हाट टू डू.
अब क्या करे.
थ्रो इट अवे.
क्या उसको फेंक देंगे.
नहीं. Get some wax.
इसलिए वो मोम लेकर आते हैं.
Fill the crack.
और वो जहां पर ये टूट आ गई है वहां पर उस मोम को भर देते हैं.
Polish it.
और उस पर पॉलिश लगा देते हैं.
Can't see it anymore.
और अब किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा.
Problem's gone.
समस्या तो दूर हो गई.
Somebody comes to buy the idol.
अब देखिए कोई वो मूर्ति लेने आया है.
Is this a good one?
वो पूछेगा ये अच्छा है क्या.
Very good, sir.
वो कहेगा सर ये तो सबसे बढ़िया है.
Perfect.
ये उत्तम है.
Absolutely perfect.
ओ ये तो बिल्कुल ही उत्तम है.
Well says the buyer.
तो अब जो खरीदने के लिए आया खरीदार वो कहेगा.
I'm going to judge this by sunlight.
मैं अब इसका न्याय परख करने जा रहा हूं सूर्य की किरण में रखने जा रहा
हूं. And he takes the idol out of the little caboose, the little shed where the man has made it.
और वो जो छोटा सा जगह जहां पर उसने उस मूर्ति को रखा वहां से उसे उठाता है.
Takes it out, puts it in the sun.
उसको सूरज में कुछ देर के लिए रख देता है.
Just a few minutes.
कुछ मिनट के लिए.
And the sun melts the wax.
और सूरज की किरणों की गर्मी से वो जो मोम है वो पिघलने लगता है.
The man is caught out.
देखो जो बेचारा है वो पकड़ा गया.
See what's happened? It's been judged by sunlight.
देखिए क्या खा गया है, सूर्य के किरण के द्वारा उसका परखा गया है.
Paul says, "Don't you be like that in the day of Christ."
पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह के दिन में तुम ऐसा ना पाए जाओ.
You see, we can fill the cracks, brethren.
प्रिय भाइयों, हमारे बीच में जो हमारे शरीर में जो दरार, कार्यों में जो दरार आया उसको हम भर सकते हैं मोम के द्वारा.
We are very good at filling the cracks so that we think of each other as good men, spiritual men, busy men.
हम अपने क्रैक्स को जो दरार है उसको मोम से भरकर दूसरों के सामने वाह कितना अच्छा ब्रदर, कितना काम कर रहा है ये ब्रदर, ऐसा हम बन सकते हैं.
But one day we're going to be judged by the light of the flaming fire of the eyes of our beloved Savior.
लेकिन एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह के अंगारों से भरे हुए आंखों से निकलने वाली रोशनी के द्वारा हमारा परख होगा, न्याय होगा.
I shouldn't be living now as a servant of the Lord, just simply trying to please you.
आज मैं प्रभु का सेवक होकर इसलिए नहीं जीऊं ताकि आप लोगों को खुश करूं.
Filling the cracks with wax.
इस प्रकार जब हम जीते हैं तब हम उन दरारों में मोम भर रहे हैं.
Paul says, "Be sincere."
पौलुस कहता है कि सच्चे और निर्दोष बनो.
Be real.
तुम सच्चे बनो.
Be true.
तुम सच्चे बनो.
So that in the day of Christ,
ताकि प्रभु के दिन में,
when the kind but searching gaze of the Savior washes over us,
जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह से भरा हुआ परखने वाली दृष्टि हमारे हृदयों से गुजरेगी,
we don't need to be ashamed.
हमें शर्म से अपने सिर को झुकाना ना पड़े.
It's there. It's our future.
ये हमारा भविष्य है.
We are one day going to be with Christ in the day of Christ.
एक दिन मसीह के दिन में मसीह के साथ हम रहेंगे.
We must prepare for it now.
हमें उसके लिए आज तैयारी करनी है.
We must live for it now.
हमें उसके लिए आज जीना.
We must let this truth change us now.
हमारे लिए आवश्यक है कि ये सत्य हमारे जीवन में परिवर्तन ले आए.
For the glory of His name.
ताकि यीशु मसीह के नाम की महिमा इसके द्वारा हो.
Amen.